उसमें तत्र दुंदु भयो ने दूर देव मानव बाधिता, उस समय देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियां बजने लगी। दुंदुभी कहते हैं उस बाजा को, उसको मुख से फूका जाता है, ऊपर ऊंचा बड़ा रहता है चौड़ा और नीचे संकीर्ण, तो दुंदुभी कहते हैं। दुंदुभियां बजी और देवलोक से देवता लोग भी बजाए दुंदुभी भीष्म के इस लीला प्रवेश पर। बहुत बड़ी विजय थी भीष्म पितामह की, भगवान को पा लिए। और हाथ केतु पुष्प वृष्ट, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवता लोग बरसा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर ले जा करके और ऊपर से बरसा, ये आकाश वर्षा वर्षा नहीं है, ये हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता, वो आदमी ही जा करके बरसा रहा है, लेकिन वास्तव में देवता लोग बरसाने लगे उस समाज भीष्म पितामह पर। पुष्प वृष्ट, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और राज्ञाम साधव सशंसु, राजाओं में जो अतिशय साधु प्रकृति के राजा थे, वे भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये क्यों कहा गया साधु राजा प्रशंसा कर रहे थे? जो असाधु थे राजा वहां नहीं सब जुटे थे, साधु राजा जुटे थे, लेकिन जो असाधु थे दुष्ट राजा लोग थे, वे कभी कभी भीष्म जी की निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? कि ब्रह्मचारी होकर के भी अपने भाई का विवाह कराया, घर में आसक्त है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, घर में क्यों पड़ा है? जो राज त्याग दिया, विवाह नहीं किया, तो फिर हस्तिनापुर में अपने घर में क्यों रहता है? इसको तो वृंदावन जाना चाहिए। है ना, कुछ ऐसा होता है। भीष्म पितामह घर में रहते हुए भी जब ब्रह्मचारी थे, फिर भी घर में रहते थे और परिवार को चाहते थे कि अभी सतपथ पर आ जाए, दुर्योधन को समझाते थे और क्या क्या करते थे, लेकिन फिर भी भगवान के परम प्रिय रहे, परम प्रिय। कुछ राजा लोग, कुछ क्षत्रिय केवल लौकिक दृष्टि से कहते थे भीष्म ठीक नहीं, और जब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी थे तो काशी नरेश की तीन लड़कियों को हाथ पकड़ कर रथ पर क्यों चढ़ाए, लड़की को छुए क्यों? अरे दुष्ट कहीं की, ये सब चीजें देखना, और देखिए कि वो कितने बड़े भक्त हैं, कितने सदाचारी हैं, महान धनुर्धर हैं, जिनसे भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। इसलिए सूर्य जी कहते जो साधु प्रकृति के राजा थे सब प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है धन्य, जीवन निष्कलंक रहा, सफल रहा। और इस तरह से जब दुंदुभियां बजी, राजा लोग प्रशंसा किए, देवता सब भगवान का कीर्तन चालू किए, ऋषि लोग कीर्तन करने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्टु मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदय स्वाश्रमान प्रयोग। कृष्ण जिनके हृदय में थे, वे कृष्ण हृदय मुनिगण भीष्म पितामह के निर्वाण को देख करके, लीला प्रवेश को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उत्साह बढ़ा कि हम भी कृष्ण का भजन करेंगे इसी तरह से भीष्म जैसा, तो हम भी भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। तो सब प्रशंसा बहुत किए, कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरह से अनेक नामों द्वारा भगवान का गुण गाया जाने लगा, ऋषि लोग वहां पर जुटे थे, वे गाने लगे। गुह्य नाम भी, परम रहस्यमय भगवान के महिमा तेज वैभव को बताने वाले नाम को गाने लगे, जिसमें कृष्ण गोविंद आदि नाम थे। ये नाम, ये गुह्य नाम का ये अर्थ नहीं है कि नाम का पता ही नहीं है, गुह्य नाम का अर्थ है गुप्त नाम का यहाँ, कि भगवान की महिमा लीला गुण जिन नामों में छिपे हुए हैं, जैसे गिरवरधारी गोवर्धनधारी गिरधारी, या कृष्ण गोविंद हरि माधव मधुसूदन राम रघुपति, ये सब नाम है भगवान, इनमें भगवान की लीलाएं छिपी है, इसको गुह्य नाम कहते। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि आप लोग जो कृष्ण जपते हैं, राम राम कहते हैं, ये नहीं, गुप्त नाम जपना चाहिए। हमसे पर्सनल भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं नहीं ये गुप्त नाम, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, ऐसे है ना। तो गुप्त उसको गुह्य कहा, गुह्य नाम भी कृष्ण के नाम। तो कृष्ण का गुह्य नाम मतलब गोपनीय नाम कौन है भाई? सबसे गोपनीय नाम तो कृष्ण है। गुह्य नाम इसलिए भी है कि गर्गाचार्य छिप कर नाम रखे थे, इसलिए वो गुह्य नाम है। या उसमें अनेक भगवान सर्वाकर्षक हैं, सारा ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, धन और विद्या, सौंदर्य सब कुछ इस नाम से व्यक्त होता है, कृष्ण नाम से, जो सर्वाकर्षक। गोविंद जो गौओं के प्रिय हैं, गौओं के पालक हैं, जिन्होंने गौओं की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किया, एक गोविंद नाम का अर्थ। ये सब भगवान के नाम है वास्तविक, इनको गुह्य नाम कहते हैं, गोविंद, कृष्ण, गोपाल, हरि, मधुसूदन, वासुदेव, इन्हीं नामों का वो कीर्तन करने लगे। गुह्य नाम भी नाम द्वारा भगवान की स्तुति किए, मतलब कीर्तन करने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी के समान याद हो तब भगवान की स्तुति करे, कोई भी व्यक्ति स्तुति कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र से या द्वादशाक्षर मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इन सब नामों से भी भगवान की स्तुति की जा सकती है। तो ऋषि लोग वहां नाम कीर्तन करने लगे और कृष्ण को हृदय में रख करके भीष्म पितामह के प्रवचन सुने थे तो भगवान की महिमा को समझ गए, कृष्ण को अपने हृदय में रख करके स्व आश्रमान प्रजज अपने अपने घर गए। सबको एक न एक दिन जाना होता है, कहीं संघ में आया है, सभा में आया है, जैसे हम लोग हैं तो अपने आश्रम में जाना है स्व आश्रमान। गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, तो अपने अपने आश्रम में गए, जाना ही है, कोई दिल्ली जाएगा, कोई जमुनानगर जाएगा, कोई अम्बाला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, पानीपत जाएगा, अपने अपने आश्रम है ना। लेकिन किसके साथ जाएंगे? कृष्ण को हृदय में लेकर और कृष्ण नाम को जिह्वा पर लेकर, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का जप करते हुए। तो सभी ऋषि गए, जब ऋषि लोग चले गए, इसके पहले एक श्लोक छोड़ दिया, किस समय कीर्तन हो रहा था मैं भूल गया इसको कहने का, तस्य निर्हरणा दिनी सम परे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत। भीष्म पितामह जब लीला में प्रवेश कर गए तो युधिष्ठिर महाराज उनका दाह संस्कार आदि किए, तो दाह संस्कार जब हो रहा था तो सारे ऋषि मुनि राजर्षि लोग अभी वहीं थे। दाह संस्कार आदि, निर्हरण आदिनी, निर्हरण आदि किए, पिंडदान किए। देखिए भीष्म पितामह मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, फिर भी जो लौकिक क्रिया है वो महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। भीष्म पितामह का यह भी बहुत बड़ा भाग्य था, इतना बड़ा वैष्णव राजर्षि युधिष्ठिर महाराज, उनका अंत्येष्टि संस्कार किए, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार आदि हुआ तो युधिष्ठिर महाराज कुछ देर के लिए बहुत शोक में डूब गए। यद्यपि वे जानते थे कि भीष्म पितामह मुक्त हो गए, भगवान की लीला में गए, लेकिन फिर भी बाहर से उनका संग छूट गया, अब संग नहीं मिलेगा, ये सोच करके कुछ देर के लिए दुखित अभवत, दुखी हो गए। तो उस समय ऋषि लोग भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे और कृष्ण का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए अपने अपने आश्रम चले। यही है रहनी, आने जाने की, रास्ते में भी जप हो सकता है, स्मरण भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए अपने आश्रम चले। तब इसके बाद कुछ दिन के बाद एक दो दिन के बाद ही महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर गए कुरुक्षेत्र से। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम्। गजाह्वयम् जिस शहर के नाम में गज शब्द है, आह्वयम् माने संज्ञा, जिस नगर के नाम में गज है, गज माने हस्ती, जिसके नाम में हस्ती अर्थात हस्तिनापुर, गजपुर या हाथीपुर कहिए, हस्तिनापुर गए और वहां जाकर के सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को, अपने पिता के भाई को धृतराष्ट्र महाराज को सांत्वना दिया, समझाया। जो उनके पुत्रों को मरवाए हैं युधिष्ठिर महाराज, वही सांत्वना दिए, क्योंकि भीष्म पितामह से उनको ज्ञान हो गया था। तो भीष्म पितामह को सांत्वना दी, वो कैसे सांत्वना दे रहे हैं, महाभारत में कथा है। बहुत विलाप कर रहे हैं भीष्म पिता, ओ धृतराष्ट्र महाराज रो रहे हैं, सौ सौ बेटा मारे गए थे, दुर्योधन मारा गया था, तो दुर्योधन का गुण गा करके, दुशासन की याद करके और सब की याद करके रो रहे थे। तो भगवान के साथ सह कृष्ण, कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज गए वहां हस्तिनापुर और उनको सांत्वना दे रहे थे, समझाए, समझा दिए। और गंधारीम च, और गंधारी जो सौ पुत्रों की जननी थी, वो बहुत दुखी थी पुत्रों के मारे जाने से, तो माता गंधारी को सांत्वना दिए। यह है सुशीलता राजा, ऐसा नहीं था कि बस राज मिला और तुरंत अब कार्ड छपाओ और राज्याभिषेक करो, ये करो वो करो। वे दुखी हैं अपने घर के, अपने बड़े पिताजी हैं धृतराष्ट्र महाराज, और बड़ी माँ है, वो दुखी है। युधिष्ठिर महाराज अपना कर्तव्य की, कृष्ण भगवान के साथ जाकर के सबसे पहले सांत्वना दी, समझाए कई प्रकार से, कई प्रकार से समझाने में भी कहते हैं कि पिताजी लिखा हुआ था पुत्रों का वियोग, लेकिन मैं भी आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं, मैं वैसे ही सेवा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि युद्ध हो, अर्जुन नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध हो गया, ये सब लिखा था, ये सब ईश्वर का विधान है, आप चिंता मत कीजिए। फिर माँ को समझाने लगे, गंधारी को कई प्रकार से समझाए। उस समझाने का जो दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर पढ़ने लायक है, सब क्या युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये सब सीखना चाहिए, परिवार के लोगों से कैसे संबंध रखा जाता है, तो जथा योग्य व्यवहार करना, संबंध रखना। जाकर सांत्वना दिए और सांत्वना देने के बाद स्वयं धृतराष्ट्र महाराज इनको कहे कि बेटा तुम राज्य करो, तुम्हारा न्याय का राज्य है और प्रजा इस समय अनाथ है, तुम सक्षम हो, तुम योग्य राजा हो, तुम राजा बनो और प्रजा का पालन करो। जब उन्होंने आज्ञा दिया कई बार, तब युधिष्ठिर महाराज स्वीकार किए। ये कई दिन लग गया राज्य लेने में। पित्रा चानुमत राजा वासुदेवानुमोदितः, धृतराष्ट्र महाराज ने कहा राजा बनने के लिए और वासुदेव ने अनुमोदन किया, कहा कि बनना चाहिए निश्चित। तब चकार राज्यम धर्मेण पितृपैता महाम विभु, समर्थ राजा थे युधिष्ठिर महाराज, तो वे अपने पिता पितामह की परंपरा से प्राप्त राज्य को किया, अर्थात प्रजा का पालन करने लगे।